तो एक दिल की बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है। मेडिकल विंग ब्रह्म कुमारीज में एंड एज सच भी ब्रह्म कुमारीज में कोई भी कोई सेशन लेता है या कोई बात शेयर करता है, आपको पता है सबके मन में एक यूनिवर्सल थॉट रहता है और वो यूनिवर्सल थॉट स्टेज पे आने के पहले ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कि जो भी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं, इट्स नॉट मी हु आई एम गोइंग टू स्पीक, देन इट इज गॉड हु इज गोइंग टू स्पीक टू यू। सिर्फ परमात्मा ही आपसे वो बातें शेयर करना चाहते हैं और मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं, यानी कि एक ट्रस्टी हूं। आई एम जस्ट अ स्मॉल पर्सन हु हैज जस्ट ऑफर्ड माई सेल्फ फॉर हिज सर्विस, राइट। ये बहुत दिल की बात है और सिर्फ मेरी नहीं है, टू एवरी पर्सन इन दिस कैंपस सबकी वही बात है। एक हमारा मेडिकल फील्ड है जहां बहुत सारी प्रिपरेशन करके बोलते हैं, बहुत अच्छा सा पीपीटी बनाते हैं, यहां भी पीपीटी बना हुआ है, लेकिन यहां पर जो बात करते हैं दिल से निकलती है। और आप जब इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके जाएंगे तो देखना आप अपनी लाइफ को दिमाग से नहीं दिल से जीना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्रिएटिंग कंपैशन, एंड इट इज वेरी वेरी क्लोज टू ईच वन ऑफ यू, आई नो दैट। क्योंकि जो कंपैशन है वो हमारे मेडिकल फील्ड जो है, जो हमारा प्रोफेशन है, आई थिंक उसका एक फाउंडेशन पिलर है। यू एग्री विद मी, है ना। कंपैशन अगर हमारे जीवन में होगा तो हम एक अच्छे हेल्थ के प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, और अगर कंपैशन नहीं है तो। एक छोटा सा रिफ्लेक्शन करते हैं, आप सभी स्ट्रेट बैठेंगे, जस्ट बी अ लिटिल अलर्ट, बॉडी को एकदम कंफर्टेबली बैठाएं, गहरी लंबी सांस लीजिए। जस्ट ब्रिंग अवेयरनेस दैट यू आर इन दिस ब्यूटिफुल कैंपस। आज का दिन एक बहुत ही सुंदर दिन है और उसमें ये एक ब्यूटिफुल मोमेंट है, और इस पवित्र वातावरण में अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि कंपैशन, काइंडनेस, करुणा या रहम की भावना मेरे प्रोफेशन में क्यों जरूरी है। इस सवाल के जवाब को एक्सप्लोर करें, थोड़ा और अपने मन की गहराइयों में जाएं कि कंपैशन मेरे जीवन में पर्सनली और मेरे प्रोफेशन में क्यों जरूरी है। अब आप अपनी अवेयरनेस वापस इस हॉल में ला सकते हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर नहीं होगा, आई रियली रियली वॉन्ट टू हियर योर थॉट्स। तो आप में से कौन शेयर करेंगे कि कंपैशन क्यों जरूरी है, रहम की भावना हमारे प्रोफेशन में क्यों जरूरी है, कोई भी बताइए। मैम, हीलिंग ऑफ द पेशेंट, ओके जी मैम। माइक दे सकते हैं ऑडियंस में किसी को, भाई जी एक्स्ट्रा माइक है, नहीं तो आप बताइए, आई रिपीट योर आंसर। राइट, तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो पेन में है, तो उनके दर्द को कम करने के लिए कंपैशन की जरूरत है। ओके, वंडरफुल। एनीवन एल्स पीछे से, जी यस, अगर समय है तो आगे आके माइक पे बोल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आगे आके बोलेंगे तो सुनेगा सबको, जब तक कोई और शेयर करना चाहे। डोंट, इट गिव्स अ हीलिंग टच, राइट, वंडरफुल। सो कंपैशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग ऑफ द पेशेंट्स. हां जी सिस्टर बताइए, माइक यहां है.
We can't relate with the patient without compassion.
बिल्कुल सही. हाँ जी, wonderful. That's a wonderful answer. हम patient से relate नहीं कर सकते अगर compassion नहीं होगा. जी सर.
The patients and their families are already under stress because of the disease of the patient and the financial conditions, prevailing health circumstances. So compassion is the most important part.
Yes, wonderful. बिल्कुल wonderful. जैसे कहते हैं ना कि शरीर में वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन इज वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन, हार्ट इज वाइटल ऑर्गन, ऐसे कंपैशन भी एक वाइटल ऑर्गन है हमारे प्रोफेशन का. और ना ही सिर्फ प्रोफेशन, आई थिंक आप अनुभव करते होंगे कि पर्सनली भी हमारी लाइफ में कंपैशन का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है.
ओम शांति जी. खुद की सेटिस्फेक्शन होती है.
हाँ, पर्सनल सेटिस्फेक्शन. अभी पर्सनल सेटिस्फेक्शन से थोड़ा सा और आगे जाएंगे. ये पर्सनल बेनिफिट बताया, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि सेटिस्फेक्शन से ज्यादा और पर्सनली हमें क्या बेनिफिट होता है. तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, हमेशा अपने स्किल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना. लेकिन आज हम थोड़ा सा स्किल्स से आगे की बात करते हैं. तो कॉम्पिटेंस और कंपैशन दोनों हमारे प्रोफेशन में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और कंपैशन को अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि हमारे मन की भावना जिससे हम किसी की सफरिंग को कम करना चाहते हैं. आपके मन में आती है भावना कि सबकी सफरिंग्स कम करनी है, तो मन में जो थॉट आती है क्या वो एग्जीक्यूट हो पाती है? जितनी इंटेंसिटी में थॉट आई कि किसी की सफरिंग को कम करना है, ये कंपैशन की भावना आई, क्या वो एक्शन में उतनी ही एग्जीक्यूट हो पाती है? जी, टू अ सर्टेन एक्सटेंट. एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर कि उसकी परसेंटेज को हम बढ़ा सके, मतलब जिस इंटेंसिटी की थॉट आई उतना ही उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कंपैशन मतलब कि मन में थॉट आना किसी की सफरिंग को कम करना, लेकिन कंपैशन मींस उस थॉट के साथ हम एक्शन भी ले रहे हैं, कर्म में भी उसको ला रहे हैं, कुछ ऐसा एफर्ट लगा रहे हैं जिससे उस पर्सन की सफरिंग को हम कम कर सकते हैं. एफर्ट क्या लगा रहे हैं, या तो हम कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे उनको आराम मिले, या फिर हम फिजिकल लेवल पे कोई एक्शन ऐसा करेंगे जिससे उनको सुकून मिल सके. तो कंपैशन को कहे जस्ट सिंपली मींस काइंडनेस, इट जस्ट सिंपली मींस केयर और अनकंडीशनल लव. और जैसे कोकिला बहन ने कहा था कि सिंपैथी, एम्पैथी और इंटरपैथी, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने तो इसके बारे में बहुत सुना है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, इससे क्लियर हो जाएगा. हो गया क्लियर? अब आप बताइए, हम लोगों पर पिटी करते हैं, सिंपैथी करते हैं, एम्पैथी करते हैं कि कंपैशनेट होते हैं? वी एक्नॉलेज द अदर पीपल सफरिंग, सेकेंड ऑप्शन. वी केयर व्हेन दे आर सफरिंग, थर्ड. डू वी फील देयर सफरिंग, एंड फोर्थ. डू आई वॉन्ट टू रिलीव देयर सफरिंग. आज का थॉट है कि रिलीव करना चाहते हैं, लेकिन आज से पहले जो ये जीवन बीता उसमें हमने क्या क्या किया? पिटी किया, सिंपैथी किया, एम्पैथी किया, क्या कंपैशनेट हुए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा किया? और चारों में से कोई ना कोई कभी कभी किया, सिंपैथी किया, है ना. तो हमने केयर की, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो वो फील कर रहे हैं उसको हम फील करें, लेकिन कंपैशन इज मच बियॉन्ड द एम्पैथी. व्हाई? आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो सफरिंग है, मैं उसको फील कर रही हूं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके दुख को फील करते हुए मैं वो दुख को फील करके अपनी स्टेट ऑफ माइंड को कम नहीं कर रही. आई विल रिपीट दिस. अगर कोई दुखी पेशेंट आया, उसके दुख को मैं समझ रही हूं, लेकिन खुद दुखी होकर अपनी मन की स्थिति को खराब नहीं करने दे रही, दैट इज कंपैशन, राइट। कि अगर कोई पेशेंट बहुत दुखी हुआ, उनके दुख को मैं समझ गई, बट आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, मैं अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर रही हूं और अपनी एक एलिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड से उस पेशेंट की या उस पर्सन की सफरिंग को खत्म करने का एफर्ट लगा सकती हूं। अब एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे प्रियजन या फैमिली मेंबर्स या पेशेंट्स अपने दिल की बात आपको सुनाते होंगे। व्हेन दे आर डिस्टर्ब्ड, दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद यू। क्या उनकी प्रॉब्लम को सुनकर आप दुखी हो जाते हैं? होते हैं। किसी किसी की प्रॉब्लम को सुनकर दुखी नहीं भी होते होंगे। अगर आप उनकी प्रॉब्लम को सुनकर दुखी होते हैं, तो तब क्या एक सही एक्शन ले पाएंगे उनकी सफरिंग को दूर करने का? नहीं ले सकते। तो आज का हमारा जो लर्निंग पॉइंट होगा वो ये होगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज को यूज करते हुए, एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोफेशनल रहते हुए, मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं दुख को समझ भी लूं लेकिन अपनी स्टेट ऑफ माइंड को खराब ना करूं। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज अ क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं? ये इम्यूनिटी कहां से लाएं? कहां से लाएं ये इम्यूनिटी? कि आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, मैं समझ रही हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्टेट ऑफ माइंड को उसी एलिवेटेड लेवल पे मेंटेन कर रही हूं, उसको कम नहीं होने दे रही हूं। उसके लिए क्या कर सकता है? अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करें। सो क्वेश्चन इज दिस कि मेंटेन कैसे करें? दिस इज द क्वेश्चन। हाउ टू डू दिस? मेडिटेशन। एनी अदर आंसर अपार्ट फ्रॉम दैट? राजयोगा मेडिटेशन। ओके, और कोई आंसर? कोई स्पेसिफिक, कोई छोटा सा स्टेप, बेबी स्टेप? जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनके लिए रखें। ओके, इसका आंसर आपको आगे वैसे मिल ही जाएगा 10 मिनट में, लेकिन अगर दो वर्ड्स का आंसर है, पहला है बी एन ऑब्जर्वर और दूसरा है बी अ गुड लिसनर। If I am an observer and if I am a listener, that I can, then I can protect myself. I can maintain that emotional immunity. उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये एम्पैथी को और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। That empathy is the same feeling with you, but compassion is that I am here to help you, right? तो एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप बाद में देख लेना, उसको मैं अभी प्ले नहीं कर रही क्योंकि हमारे पास समय कम है। So compassion is much ahead of empathy, sympathy and antipathy. अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम सब के लिए है, आपके लिए नहीं, हम सब के लिए। हमारी भावना भी बहुत अच्छी है, थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, हम हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन था कि जो सोचते हैं वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। सो व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द पाथ ऑफ कंपैशन? हमें कंपैशनेट होने से कौन रोकता है? कौन सी बात रोकती है? टाइम नहीं है। ओके, हेक्टिक शेड्यूल। एनीवन एल्स? जी, रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स? ओके, ये दोनों बातों को एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्चुअली। अच्छा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आंसर ठीक है। क्या कंपैशनेट होने के लिए डू वी ऑलवेज नीड मनी? सम ऑफ द टाइम वी विल बी नीडिंग मनी, यू आर राइट, बट मेनी ऑफ द टाइम्स वी विल नॉट बी नीडिंग मनी, तो वहां पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सॉल्व हो जाएगा। कंपैशनेट होने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, कौन सा रिसोर्स चाहिए? टू बी कंपैशनेट कौन सा रिसोर्स चाहिए? व्हाट डू वी नीड? हाँ, वी नीड द एटीट्यूड, वी नीड अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। सो दैट इज नॉट अ फिजिकल रिसोर्स, दैट इज इनसाइड। सो कंपैशनेट होने के लिए मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड दैट इज द बेस्ट रिसोर्स। यस, हेक्टिक लाइफ शेड्यूल, ये बिल्कुल सही बात है। ये कंस्ट्रेंट आता है कि फिजिकली इतना टाइम नहीं होता। और कौन से ब्लॉक्स हैं? इन ब्लॉक्स को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसमें से कुछ ब्लॉक्स मॉडिफाइबल हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल। तो मॉडिफाइबल ब्लॉक्स कौन से हैं? अवर विलिंगनेस। बट विलिंगनेस ब्लॉक नहीं हुआ ना, विलिंगनेस तो हेल्प करेगा टू बी कंपैशनेट, राइट। ब्लॉक कौन सा है? मेरी पर्सनालिटी में ऐसा कौन सा ट्रेट है जो मुझे कंपैशनेट होने से रोक देगा? ईगो, वंडरफुल ईगो, बहुत बहुत बड़ा ब्लॉक है. सेल्फिशनेस, राइट. राइट, फियर, फियर, फियर ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस या और किसी बात का फियर. सो फियर, ईगो, ये हमारे पर्सनालिटी के बहुत बड़े ब्लॉक्स हैं. एंगर, एंगर, जैसे कहते हैं ना कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते. तो मेरे मन में, इफ माय मन, माय माइंड इज द बिगेस्ट रिसोर्स फॉर कंपैशन, तो इस माइंड में अगर एंगर होगा तो कंपैशन नहीं हो सकता. इस माइंड में अगर ईगो होगा तो कंपैशन नहीं हो सकता. तो मेरी पर्सनालिटी के कौन से वो मॉडिफाइबल ट्रेट्स हैं, आई नीड टू आइडेंटिफाई देम एंड आई नीड टू ऑल्टर देम. एक छोटी सी एक्सरसाइज है आप सबके लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. यू हैव टू आइडेंटिफाई एनी फेमस पर्सनैलिटी. आपको ये रिफ्लेक्ट करना है यहीं बैठे बैठे, चाहे तो आप आंख बंद कर लीजिए. आई एम गोइंग टू स्पीक, यू नीड नॉट सी ऑन द स्क्रीन. आइडेंटिफाई अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें जो आपके बहुत क्लोज हो, या कोई फेमस पर्सनैलिटी भी हो, आप जिनको कंपैशनेट समझते हैं, बस उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, दैट यू फाइंड देम कंपैशनेट. अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है जो उसको कंपैशनेट बनाती है. जस्ट आइडेंटिफाई दैट वन प्रिडोमिनेंट क्वालिटी इन दैट पर्सन. और अगर एक आइडेंटिफाई कर ली तो सेकंड क्वालिटी को आइडेंटिफाई करें. और अगर आप लोग को लगता है भूल जाएंगे तो कॉपी पे भी लिख सकते हैं. आपके हिसाब से जो व्यक्ति कंपैशनेट है उसको आइडेंटिफाई करें और उनकी उस प्रिडोमिनेंट क्वालिटी को लोकेट करें. अगर एक से ज्यादा मिलती है तो सेकंड क्वालिटी देखें. ओके, थैंक यू सो मच. सो आप में से कौन शेयर करेगा? केयरिंग. सो कैन यू हेल्प मी? सो केयरिंग इज वन क्वालिटी. So, Dr. Rajat is very, very compassionate enough to help me and he's going to write down. It's okay. Yeah. So, caring. और कौन सी quality आपने देखी? Kindness. दो हो गई. और? Helplessness. Helping. Right. Willingness and readiness to help. Simplicity. Okay. बहुत सारी है. It's okay. मैं याद कर लेती हूँ. कोई बात नहीं. Okay. Full screen कर दीजिए. So, kindness. Readiness to help, willingness to help, simplicity. Or? Cheerfulness, cheerfulness, yes. Okay, ji? Patience, patience, okay. Or? Simplicity, cheerfulness, kindness, cooperation, helping the other person, willingness to help. Okay, wonderful. Yeah, please. Please.
The most compassionate person that I've seen in my life is Mr. Rusi Modi, late Mr. Rusi Modi. And the qualities that he had is a smile.
Wonderful.
Charming smile. If you are in front of him, even you don't know, he will give such a charming smile, you will be simply attracted to him. His memory, he remembers the names of almost all his managers, even the shop floor worker. And second was his memory. These were the four, and I have not seen yet a more compassionate person than him. Thank you.
Wonderful, wonderful. है ना. सो कंपैशनेट होने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत क्या है? जस्ट अ स्माइल, चार्मिंगनेस, राइट. एक सिंपल से मुस्कुराहट भी अगर चेहरे पे आ गई तो ऑलरेडी वो कंपैशन की फीलिंग ट्रांसफर हो जाती है. अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन मोटिव है आज के सेशन का, कि जो कंपैशन है, जो ये वर्च्यू है, ये क्वालिटी है, ये गॉड गिफ्ट है या इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं? गॉड गिफ्ट है या हम इसको एक्वायर कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, राइट. और आज के इस मोमेंट में हम जितने भी पर्सनालिटीज यहां बैठी है, हम सब के अंदर कंपैशन की परसेंटेज को बढ़ाने की मार्जिन है, राइट. सो यू वॉन्ट टू इंक्रीज द परसेंटेज, राइट. तो कुछ रेडीमेड टूल्स चाहिए उसके लिए, क्योंकि सबको लगता है ना रेडीमेड मिल जाए. सो देर आर सम टूल्स टू इंक्रीज कंपैशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज कंपैशनेट लिसनिंग. कंपैशनेट लिसनिंग, और ऐसा कहते हैं कि आज की दुनिया में अगर किसी को सुनना आ जाए तो उससे बड़ा आर्ट कोई नहीं. सो द बिगेस्ट आर्ट इन दिस लाइफ इज द आर्ट ऑफ द लिसनिंग, एंड यू ऑल आर मास्टर्स इन दैट. उसके मास्टर्स कौन है? आप सब लोग हैं, क्योंकि मॉर्निंग से आप सुन रहे हैं. लेकिन आज हम लिसनिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे. तीन चीजें हैं, एक है हियरिंग, एक है लिसनिंग और कंपैशनेट लिसनिंग. तो हियरिंग मतलब ऊपर ऊपर से सुनना, पैसिव प्रोसेस. लिसनिंग मतलब एक्टिव प्रोसेस. आप में से किसके घर में बच्चे हैं? है ना, बच्चे स्कूल से आते हैं, स्कूल का अपना रूटीन बताते हैं पूरा, तो बच्चों को कैसे सुनते हो आप? पैसिवली सुनते हो कि एक्टिवली सुनते हो? पैसिवली सुनते हो कि एक्टिवली सुनते हो? अगर मम्मी के हाथ में मोबाइल है बच्चे को सुनते हुए, तो क्या होगा? वो तो हियरिंग हो जाएगा, है ना. तो अगर हम अटेंशन से सुन रहे हैं, सो हियरिंग विद अटेंशन इज लिसनिंग. हियरिंग विद अटेंशन इज लिसनिंग. एक्टिव हियरिंग इज लिसनिंग. अब तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है. हम सब ने सुनना तो सीख लिया है, हम फर्स्ट की जगह सेकंड स्टेप पे तो आ गए हैं, लेकिन तीसरा स्टेप है कंपैशनेट लिसनिंग. कंपैशनेट लिसनिंग में ऐसा क्या एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है? इंटरैक्शन. ओके, सुनते वक्त थोड़ा सा इंटरैक्शन करें तो कंपैशनेट लिसनिंग होगा. और कुछ? अंडरस्टैंडिंग. वंडरफुल. हाँ, सुनते हुए अगर सामने वाले पर्सन की बात को समझे तो कंपैशनेट लिसनिंग होगा. और जी, बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, है ना. और कुछ? 100%. वंडरफुल. जब किसी को सुने तो पूरा अटेंशन देकर सुने. सो लिसनिंग प्लस फुल अटेंशन, लिसनिंग प्लस 100% अटेंशन इज कंपैशनेट लिसनिंग. और कोई इंग्रेडिएंट? जैसे अच्छी सब्जी बनाते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट डालने होते हैं ना, लेकिन कुछ की इंग्रेडिएंट होते हैं, वो मिस नहीं कर सकते, वरना सब्जी टेस्टी नहीं बनती. वो की इंग्रेडिएंट क्या है लिसनिंग में जो उसको कंपैशनेट लिसनिंग बनाएगी? नॉन जजमेंटल. वंडरफुल, एंड दैट इज रियली नाइस. अगर हम किसी को सुन रहे हैं, आई नीड टू बी नॉन जजमेंटल, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब आपसे कोई व्यक्ति अपने दिल की बात शेयर करने आता है तो कॉन्फिडेंशियल बातें भी शेयर करेगा, अपनी कोई कमी और कमजोरी भी शेयर कर सकते हैं. तो उस व्यक्ति की, उस पेशेंट की कमी कमजोरी सुनते वक्त हम उसको जज नहीं कर सकते. अगर हम उसको जज कर रहे हैं तो शायद हम फर्स्ट स्टेप पे हैं, वी आर जस्ट हियरिंग दैट पर्सन. बट अगर हम उसकी बात को पूरे अटेंशन के साथ, 100% अटेंशन के साथ और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ सुन रहे हैं, तो वो है कंपैशनेट लिसनिंग. अब एक और प्रश्न अपने आप से पूछ लीजिए कि आज तक आपने जिस जिस को भी सुना, चाहे दोस्तों को सुना, परिवार वालों को सुना, पेशेंट्स को सुना, उनको हियर किया था, लिसन किया था या कंपैशनेटली लिसन किया था? अब ईमानदारी से जवाब देना है, लिसन किया था. तो सेकंड स्टेप किया है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जजमेंटल हो जाते हैं. सो इज इट डिफिकल्ट टू बी नॉन जजमेंटल? ये अवेयरनेस तो है कि नॉन जजमेंटल होना चाहिए, बट इज इट डिफिकल्ट? इट इज डिफिकल्ट. और थोड़ा आसान कर दे इसको. थोड़ा आसान कर दे। आपका छोटा बच्चा अगर आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे, अपनी गलती बताए, बच्चे के लिए नॉन जजमेंटल होते हैं? बहन के लिए नॉन जजमेंटल होते हैं? भाई के लिए नॉन जजमेंटल होते हैं? कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसके लिए आप आसानी से नॉन जजमेंटल हो सकते हैं? बच्चे के लिए, है ना, क्योंकि बच्चे की जो भी गलती है उसको माफ भी कर देते हैं और कोई बात नहीं, उसको चांस देते हैं कि और इम्प्रूवमेंट का। तो बच्चे के लिए हम नॉन जजमेंटल हो सकते हैं। अब एक दूसरा सिनेरियो हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सब जो बैठे हैं हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, गलतियां करते हैं हम, हमारे लिए नॉन जजमेंटल कौन है? सबकी इशारा कहा गया ऊपर। तो परमात्मा जो है हम सबका पिता है, हम उसके बच्चे हैं। गॉड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉन जजमेंटल टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिवली। हम कितना भी गलती करें उनसे इतना दिल से प्रॉमिस भी करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर उनके पास जाते हैं, फिर कहते हैं हमसे गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, फिर वो हमें माफ करते हैं, फिर वो हमें चार्ज करते हैं और फिर से हम गलती करते हैं। बट ही नेवर नेवर स्टॉप्स लविंग अस। परमात्मा कभी भी हमें देना बंद नहीं करते, राइट? पहला आंसर। तो अगर परमात्मा मेरे लिए नॉन जजमेंटल हो सकते हैं, आपके लिए नॉन जजमेंटल हो सकते हैं, तो फिर मैं औरों के लिए भी नॉन जजमेंटल हो सकती हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा और इजी हो गया नॉन जजमेंटल होना। अब थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, और इजी बनाना है ना। नॉन जजमेंटल होना हमारे लिए बिल्कुल एक मेरी पर्सनालिटी का नेचुरल ट्रेट होना चाहिए। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, जैसे डॉक्टर रजत है, डॉक्टर विवेकानंद है, आप सब लोग हैं, हाउ आर वी रिलेटेड टू ईच अदर? व्हाट इज अवर रिलेशनशिप? इज दिस द रिलेशनशिप ऑफ अ डेलीगेट और अ ऑर्गेनाइजर? नो। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप? सोल टू सोल। तो सोल टू सोल का क्या रिलेशन है? नेम दैट रिलेशनशिप, टाइटल दो उसको कुछ। हाँ, सिबलिंग्स, ठीक है। हाँ, भाई बहन या सिबलिंग्स बेटर है। हम सिबलिंग्स क्यों हैं? क्योंकि हमारा पेरेंट एक ही है। हाँ, हमारा पेरेंट एक है तो हम लोग सिबलिंग्स हैं, और सिबलिंग्स है तो हम एक ही फैमिली के हैं, और एक ही फैमिली के हैं तो हम एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, राइट? सो दिस कॉन्सेप्ट दैट हम सब एक परमात्मा की संतान है, ये कॉन्सेप्ट बिलोंगिंगनेस लेकर आता है हमारे लिए। और जब बिलोंगिंगनेस, अपनेपन की भावना होती है, तो नॉन जजमेंटल होना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? तो आगे से अगर आपके मन में किसी के लिए जजमेंट निकले, तो दो बातें हमेशा याद रख लेना। पहली, कि परमात्मा किसी को जज नहीं करता, तो मुझे भी अथॉरिटी नहीं है किसी को जज करने की। और दूसरा क्या याद करेंगे? कि हम सभी एक परमात्मा की संतान है, एक परिवार है, तो फिर मैं किसी को जज नहीं कर सकती, राइट? पर कंपैशनेट लिसनिंग हमारा खत्म नहीं हुआ अभी। एक और की इंग्रेडिएंट रह गया। कहते हैं ना, अगर सबसे टेस्टी सब्जी बनानी है तो सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। सो कंपैशनेट लिसनिंग इज लिसनिंग फ्रॉम द हार्ट। दिमाग से नहीं सुनना बल्कि दिल से सुनना है। अब तक तो हम दिमाग से सुनते आए हैं। दिमाग से सुनने का मतलब क्या? लॉजिकल, तर्क वितर्क डालना। लेकिन दिल से सुनना मतलब जैसे माँ अपने बच्चे को सुनती है। सो लिसनिंग विद द हार्ट इज कंपैशनेट लिसनिंग। लिसनिंग विद फुल अटेंशन इज कंपैशनेट लिसनिंग। लिसनिंग विद अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड इज कंपैशनेट लिसनिंग। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट, कंपैशनेट लिसनिंग तभी हो पाएगी जब हम अंदर से काम होंगे। अगर अंदर से मन हलचल में होता रहेगा तो हम कंपैशनेटली लिसन नहीं कर सकते। सो कंपैशनेट लिसनिंग मीन्स मेंटेनिंग द इनर स्टिलनेस। तो टेक होम मैसेज आज का ये है कि अगर कंपैशन को हमें अपनी पर्सनैलिटी में बढ़ाना है, तो हमें इस ट्रेट को अपने अंदर लाना होगा. कौन सा? कंपैशनेटली सबको सुनना होगा. कर पाएंगे? इजी है. इसके लिए कोई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है सिस्टर. शी वाज शेयरिंग ना, रिसोर्सेज चाहिए. क्या इसके लिए कोई जरूरत है, कोई फैसिलिटीज चाहिए? नहीं. दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट. एंड द सेकेंड टूल फॉर कंपैशन इज पेशेंस. आप सब ने शेयर किया था, पेशेंस एंड अनकंडीशनल लव. अगर हमारे मन के अंदर अनकंडीशनल लव होगा सबके लिए, तो हम कंपैशनेट हो सकते हैं. ओके, तो दिस वॉज अवर मेन टेक होम मैसेज फॉर द डे. और एक ही बहुत अच्छी स्लाइड आपके सामने है. देयर आर थ्री सर्कल्स. और आज तक हमने कौन से वाले सर्कल पे सबसे ज्यादा अटेंशन दिया? आउटर सर्कल पे, इनर के इनर सर्कल पे कि मिडिल सर्कल पे? स्किल्स ट्रेनिंग इज आउटर सर्कल. अपनी स्किल्स को बढ़ाना, अपने बिहेवियर को बढ़ाना इज आउटर सर्कल. केयर करना, सिंपैथी करना, एम्पैथी करना इज मिडिल सर्कल. और उससे भी कोर वैल्यू है कंपैशन, राइट? उससे भी कोर वैल्यू. तो आज हम किस पे अटेंशन दे रहे हैं? बिल्कुल इनर मोस्ट सर्कल पे. अगर इनर मोस्ट सर्कल को ठीक कर देंगे तो मिडिल और आउटर सर्कल अपने आप ठीक हो जाएगा. हम सब कंपैशन शो कैसे कर सकते हैं? हाउ डू वी एक्सप्रेस कंपैशन विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग? बिना बोले, बिना एक्शन के कंपैशन कैसे शो हो सकता है? हाथ हिलाके, टच, जैसे दिखा रहे हैं. ओके, पेशेंट के कंधे पे हाथ रख के, किसी को प्यार से हग करके, ये तो एक्शन हो गया. चलो, ऐसे कंपैशन शो कर सकते हैं. और फीलिंग, स्माइलिंग. स्माइलिंग मतलब एक्सप्रेशन से कर सकते हैं. एक्सप्रेशन हो गया. अगर एक्सप्रेशन भी नहीं है तो विदाउट एक्सप्रेशन कैसे करेंगे? आईज, आंखों से कैसे शो करेंगे? अभी तो उसके ऊपर एक लंबा सेशन हुआ है अभी. फीलिंग्स एंड वाइब्रेशंस, राइट? ब्लेसिंग्स. सो इफ आई हैव ब्लेसिंग्स इन माई माइंड, अगर मेरे मन में सबके लिए शुभ भावना है, तो फिर मैं कंपैशन शो कर सकती हूँ. तो आपने अब तक कंपैशन को शो किया होगा किसी के कंधे पे हाथ रख के. जरूर करना है. कीप ऑन डूइंग इट जहां फिजिबल है, राइट? किसी को प्यार से गले लगा के शो करना है, हाँ, स्माइल करके शो करना है, चीयरफुलनेस रहना है. लेकिन अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आ गई. अब है कोर वैल्यू. हमें अंदर से अपनी भावना, अपनी शुभ भावना को मेंटेन करना है. अगर मेरे मन में शुभ भावना होगी, ब्लेसिंग्स होंगी, तो शायद बिना कोई एक्शन करे भी मैं कंपैशन ट्रांसफर कर सकती हूँ. बिना कोई एक्शन करे, बिना कोई एक्सप्रेशन करे. सो विदाउट एक्शन एंड विदाउट एक्सप्रेशन भी हम कंपैशन को शो कर सकते हैं. दैट इज विद द शुभ भावना एंड ब्लेसिंग्स. सो आप सभी तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, और ये मुझे प्रूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कंपैशन हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है. कितने सारे तो रिसर्च हो चुके हैं जहां पे कंपैशन ने हीलिंग को बढ़ाया है, जहां पे पेशेंट की हीलिंग प्रेसिपिटेट हुई है. सो जो कंपैशन है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? फर्स्ट इज कंपैशनेट लिसनिंग. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज एंड द लास्ट मैसेज ऑफ द डे इज सेल्फ कंपैशन. आप कंपैशन को ट्रांसफर कब कर पाएंगे? जब आपके पास उसका स्टॉक भरपूर होगा. आप किसी को ब्लेसिंग्स कैसे दे पाओगे? जब आपके पास उसका स्टॉक भरपूर होगा. सो सेल्फ कंपैशन इज सेल्फ केयर. एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, कि आज संडे है, 12 जून का दिन है, जून के 11 दिन बीत चुके हैं. पिछले 11 दिनों में आपने ऐसा कौन सा एफर्ट लिया, कॉन्शियस एफर्ट कौन सा लिया, जिसमें आपने खुद की केयर की? मैम, व्हाट डिड यू डू इन लास्ट 11 डेज? वन कॉन्शियस वॉलंटरी एफर्ट इन विच यू केयर्ड फॉर योर सेल्फ. यहां आए, ये यूनैनिमस आंसर है. बिल्कुल सही है ना. यहां आना तो सबसे बड़ा एफर्ट लिया. यहां आना मतलब अपनी केयर करना. इसके अलावा टाइम लग रहा है ना सोचने में? अगर मैं पूछूं 1 मई to 31 मई में कौन सा एफर्ट लिया था, मई में तो नहीं आए थे ना यहाँ पे, तो लास्ट महीने कौन सा एफर्ट लिया था सेल्फ केयर का? आपको पता है इतना टाइम क्यों लग रहा है सोचने में? डर भी क्यों लग रहा है मैम? क्योंकि क्योंकि हमने आज तक सबसे ज्यादा किसको इग्नोर किया है? खुद को इग्नोर किया है, राइट? एंड दिस इज द बिगेस्ट आई ओपनर फॉर ईच वन ऑफ अस टुडे। और इस आई ओपनर को अब हम चेंज करेंगे अपनी लाइफ में कि आज दिन के बाद हम अपने आप को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि इसका ऑपोजिट करेंगे। क्या करेंगे? अपनी केयर करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग, अपनी केयर कैसे करेंगे? बॉडी की केयर कैसे करेंगे? यू ऑल नो, आप एक्सपर्ट हैं उसमें। बॉडी की केयर कैसे करेंगे? गुड फूड, एक्सरसाइज। मन की केयर कैसे करेंगे? मन की केयर कैसे करेंगे? गुड थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स और मेडिटेशन। ये तो यूनिवर्सल आंसर है ना, हर चीज का कोई आंसर ना मिले तो हम मेडिटेशन बोलेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा ना फिजिबल होके बात करनी है। फिजिबल मतलब एक छोटा सा बेबी स्टेप लेना है जिसमें हमें खुद की केयर करनी है। और कुछ नहीं तो 10 मिनट शांति से ही बैठ जाइए। 10 मिनट शाम को चाय का कप लेके जब आप अपना काम से फ्री होते हैं अपने घर में, जस्ट स्पेंड 10 मिनट्स विद योरसेल्फ। हैव अ हार्ट टू हार्ट चिट चैट विद योरसेल्फ। आस्क योरसेल्फ, अपने मन से पूछें कि आज पूरा दिन कैसा बीता, मेरा मन तुम हलचल में तो नहीं आए? और अगर हलचल में आए तो अपने मन की बात सुने और फिर उसका सॉल्यूशन दें। हमें सबसे ज्यादा अपनी केयर करनी है। ये जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं, ये तभी एग्जीक्यूट हो पाएगी जब सेल्फ कंपैशन होगा, जब मैं अपनी केयर करूंगी, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप फॉर टुडे इज हम कोई ना कोई ऐसा पर्सनलाइज्ड प्लान बनाएंगे जिसमें हम खुद की केयर करेंगे। एक टाइम फिक्स करना है अपने लिए। बताइए अपने लिए कितने मिनट फिक्स करेंगे? आज फिक्स करके जाना है यहां से। हाउ मेनी मिनट्स? कितने मैंडेटरी हैं, कितने चाहिए खुद के लिए? 24 घंटे में से कितने मिनट्स फॉर योरसेल्फ? 1 आवर? कितना? 1 आवर? प्रॉमिस? 1 घंटा अपने आप को देंगे, राइट? तो आज से हम अपने आप को 1 घंटा देंगे। उस 1 घंटे में शरीर की केयर भी करेंगे और मन की केयर भी करेंगे, राइट? एंड द नेक्स्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग कंपैशन इज फॉरगिवनेस। किसी को माफ करे बिना कंपैशनेट हो सकते हो? नहीं। एंड अनकंडीशनल लव। हाँ, ये जो पूरा लास्ट में है ना, ये की होम मैसेज है कंपैशन के लिए। ठीक है जी, तो अब लास्ट में हम वाइंड अप करते हैं। एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम इन्हीं सारे स्टेप्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाइए, अपने आप को बहुत अच्छे से चार्ज करेंगे। ब्रदर आप रेड लाइट कर दीजिए। पांच बार गहरी लंबी सांस लेंगे। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। दूसरी बार गहरी लंबी सांस। थर्ड टाइम, फोर्थ एंड फिफ्थ। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते रहेंगे और अब पूरा ध्यान अपने मन पर लेकर जाएं। अब मैं एक अंदर की यात्रा शुरू करने वाली हूं। आज अपने मन से एक सवाल पूछें। मेरे मन, माय माइंड, How are you doing? तुम कैसे हो? और अपने मन को ये कहें कि I am there for you। मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने मन को आज ऑब्जर्व करें, मेरे मन में कई किस्म के विचार आते हैं, आज एक अच्छे ऑब्जर्वर की तरह हर विचार को, हर थॉट को आने की परमिशन दें और हर थॉट को जाने की भी परमिशन दें। आई एम अलाउइंग एवरी थॉट टू कम इन टू माई माइंड एंड आई एम लेटिंग गो एवरी थॉट। लेटिंग गो, ये कितना नेचुरल संस्कार है मेरा। इट इज माई नेचुरल पर्सनैलिटी दैट आई कैन लेट गो। मेरे मन में जो भी हलचल वाले विचार हैं उनको पूरे प्यार से छुट्टी दे दें, मन को बिल्कुल हल्का करें। अब मैं एक शांत मन हूं। अब अपने सामने, अपने मन की आंखों के सामने किसी एक ऐसे व्यक्ति को रिकॉल करें जिन्होंने आपके साथ गलत किया और आज इस पवित्र भूमि पर परमात्मा के सामने, इस परिवार के सामने उस व्यक्ति को दिल से माफ करें। आई फॉरगिव दैट पर्सन, आई हैव अ बिग हार्ट एंड आई एम फॉरगिविंग एवरीवन हु हैज रॉन्ग्ड मी। मेरे पास ये शक्ति है कि मैं सबको माफ कर सकती हूं। और अब बड़ा दिल रख के अपने आप को माफ करें। अगर मन में कोई भी गिल्ट है तो अपने आप को आज उस गिल्ट से लिबरेट कर दें। आई एम अ लाइट सोल, लाइट हार्टेड, फ्री फ्रॉम गिल्ट। मेरे मन के अंदर खुद के लिए अनकंडीशनल लव है, मेरे परिवार के लिए अनकंडीशनल प्यार है और पूरी दुनिया के लिए अनकंडीशनल लव है। आई एम अ लवफुल बींग, आई एम अ कंपैशनेट बींग। मैं बहुत ही रहम दिल हूं। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास कोई परेशानी लेकर आए तो मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं उनकी तकलीफ को कम कर सकती हूं। परमात्मा ने मुझे इतना सक्षम बनाया है, इतना शक्तिशाली बनाया है कि मैं हर किसी की समस्या का समाधान कर सकती हूं, सबको सुकून दे सकती हूं। आई एम अ रिफ्रेशिंग सोल हु कैन रिफ्रेश एवरीवन अराउंड मी। अपने आप को देखें उस महान दृष्टि से जैसे परमात्मा मुझे देखते हैं। मेरा प्यारा बच्चा, शक्तिशाली बच्चा, एक रहम दिल बच्चा जो किसी पर एक नजर भी डाल दे तो उसकी तकलीफें खत्म कर सकता है। आई एम एन ऑब्स्टेकल फ्री सोल। मेरे जीवन में जो भी विघ्न आते हैं मैं उन विघ्नों को नष्ट कर सकती हूं। आई हैव दैट पावर। मैं अपने जीवन को निर्विघ्न बना सकती हूं और मेरे आसपास के लोगों को भी। आई एम अ compassionate being. I accept everyone around me as they are. I appreciate everyone around me as they are. Now giving blessings to others is so natural. Receiving blessings from everyone is so natural. I have a stock of blessings. Sabko shubh bhavana dena mera natural sanskar hai. This is my innate personality. I can bless everyone around me. I am a compassionate being. Ab dheere se apne aankhe kholenge, apne body ki awareness mein aayenge, aur kholi aankhon se apne man ko dekhenge, kholi aankhon se realize karenge that I am a compassionate soul. Compassion is my natural nature. Rehm ki bhavna meri natural personality hai. Mere man mein sab ke liye shubh bhavna hai. I have forgiven everyone and I am caring for myself today. I am going to care for myself every day. I am the most fortunate soul on this earth. Most fortunate. I am God's child. जो भी patient मेरे पास आएगा, सिर्फ उनकी परेशानी सुनते ही उन्हें सुकून की भावना अनुभव होगी. उस patient की healing शुरू हो जाएगी. I am a healer. I am a God's instrument. I am a compassionate healer. Thank you so much. And Om Shanti. And I think there is no need of any words now. Aap already a compassionate soul hai. And this is a very, very good news to all of you. Congratulations, you are a compassionate soul already. Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया रीना बहन. सबको कंपैशन फुल बना दिया ना, बन गए ना सभी. हर एक के अंदर के संस्कार जागृत करा दिए. हर एक में क्रिएटिंग, उसका क्रिएशन हो गया. बहुत बहुत शुक्रिया. अभी उनका बहनों से निवेदन करती हूँ, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे.